श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 87 साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भला वेद उस परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकते हैं जिसे शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित है, किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक स्वरूपों तथा उनके कारणों को लांग जाने के कारण इन गुणों से रहित है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ने जीवों की भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण को प्रकट किया, जिससे वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगा सकें। सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए बारंबार जन्म ले सकें, अगले जन्म में ऊपर उठ सकें तथा अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमारे प्राचीन पूर्वजों से भी पूर्व जो लोग हो चुके हैं, उन्होंने भी परम सत्य के इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान किया है। निसंदेह जो भी श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान में एकाग्र होता है, वह भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इस संबंध में मैं तुमसे भगवान नारायण विषयक एक गाथा कहूंगा। यह उस वार्ता के विषय में है जो श्री नारायण ऋषि तथा नारद मुनि के मध्य हुई थी। एक बार ब्रह्मांड के विविध लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान के प्रिय भक्त नारद आदि ऋषि नारायण से मिलने उनके आश्रम में गए। कल्प के शुभारंभ से ही नारायण ऋषि इस भारत भूमि में धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह संपन्न करते हुए एवं मनुष्यों के इस लोक तथा अगले लोक में लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान तथा आत्म संयम को आदर्श रूप प्रदान करते हुए तपस्या कर रहे थे। वहां नारद भगवान नारायण ऋषि के पास पहुंचे, जो कलाप ग्राम के मुनियों के बीच में बैठे हुए थे। हे गुरुवीर, भगवान को नमस्कार करने के बाद नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। ऋषियों के सुनते सुनते नारायण ऋषि ने नारद को परम ब्रह्म विषयक वह प्राचीन चर्चा सुनाई जो जन लोक के वासियों के बीच हुई थी। भगवान ने कहा, हे स्वजन्मा ब्रह्मा के पुत्र, एक बार बहुत समय पहले जन लोक में रहने वाले विद्वान मुनियों ने दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हुए एक महान ब्रह्म यज्ञ संपन्न किया। ये सारे मुनि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उस समय तुम श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने गए हुए थे, जिनके भीतर ब्रह्मांड के संहार काल के समय सारे वेद विश्राम करते हैं। जन लोक में पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में ऋषियों के मध्य जीवन वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। निसंदेह तब यही प्रश्न उठा था जिसे तुम अब मुझसे पूछ रहे हो। यद्यपि वेदा अध्ययन तथा तपस्या के मामले में ये ऋषि समान रूप से योग्य थे और मित्रों शत्रुओं तथा निष्पक्षों को समान दृष्टि से देखते थे, फिर भी उन्होंने अपने में से एक को वक्ता बनाया और शेष जन उत्सुक श्रोता बन गए। श्री सनंदन ने उत्तर दिया, जब भगवान ने अपने द्वारा पूर्व निर्मित ब्रह्मांड को समेट लिया तो वे कुछ काल तक ऐसे लेते रहे मानो सोए हुए हैं और उनकी सारी शक्तियां उनमें सुप्त पड़ी रही। जब अगली सृष्टि करने का समय आया तो साक्षात वेदों ने उनकी महिमाओं का गायन करते हुए उन्हें जगाया, जिस तरह राजा की सेवा में लगे कवि गण प्रातः काल उसके पास जाकर उसके वीरतापूर्ण कार्यों को सुनाकर उसे जगाते हैं। श्रुतियों ने कहा, हे अजीत, आपकी जय हो, जय हो। अपने स्वभाव से आप समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, अतएव आप माया की शाश्वत शक्ति को परास्त करें जो भद्र जीवों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए तीनों गुणों को अपने वश में कर लेती है। चर तथा अचर देहधारियों की समस्त शक्ति को जागृत करने वाले, कभी कभी जब आप अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं तो वेद आपको पहचान लेते हैं। इस दृश्य जगत की पहचान ब्रह्म से की जाती है, क्योंकि पर ब्रह्म समस्त जगत की अंतिम नींव है। यद्यपि समस्त उत्पन्न वस्तुएं उनसे उद्भूत होती हैं और अंत में उसी में लीन होती हैं, तो भी ब्रह्म अपरिवर्तित रहता है। जिस तरह की मिट्टी जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं और वे वस्तुएं फिर उसी में लीन हो जाती हैं, वह अपरिवर्तित रहती है। इसीलिए सारे वैदिक ऋषि अपने विचारों, अपने शब्दों तथा अपने कर्मों को आपको ही अर्पित करते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं उसे उनके पैर स्पर्श न कर सके। अतएव हे त्रिलोकपति, बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त कलेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है। और हे परम पुरुष, आपके असली स्वभाव की जिसके भीतर निर्बाध आनंद भरा है, पूजा करने में समर्थ हैं। यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित हैं, अन्यथा उनका सांस लेना दौकनी जैसा है। यह तो आपकी एकमात्र कृपा ही है कि महत्तत्व तथा मिथ्या अहंकार से प्रारंभ होने वाले तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। अन्नमय इत्यादि स्वरूपों में आप ही चरम हैं, जो जीव के साथ भौतिक आवरणों में प्रवेश करके उसके ही जैसे स्वरूप ग्रहण करते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक स्वरूपों से भिन्न आप उन सबों में निहित वास्तविकता हैं। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिष्कृत होती है, वे ब्रह्म को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरुणी गण उसे हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है, जहां से सारी प्राणिक शाखाएं नाड़ियां निकलती हैं। हे अनंत, ये पूजक अपनी चेतना को वहां से ऊपर उठाकर सिर की चोटी तक ले जाते हैं, जहां वे आपको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां से वे पुनः इस जगत में, जो मृत्यु के मुख स्वरूप है, नहीं गिरेंगे। आपने जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की हैं, उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार आप अपने को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूपों में प्रकट करती है, अतएव जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन तमाम अस्थाई योनियों में स्थाई सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता है। जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी आपका ही भिन्नांश है। जीव की ऐसी स्थिति को निश्चित करके ही विद्वान मुनि जन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं, जो मुक्ति के स्रोत हैं और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक बेते अर्पित की जाती हैं। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं, ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देती हैं, क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। जब यह मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है, तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है, किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और हर तरह से स्नेह पूर्वक सहायता करते हैं, और यद्यपि आप उनके असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते, उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं, किंतु वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया, जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं। इसी तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी, जिसका आनंद आपकी प्रियतमाएं आपकी विशाल सर्प सदृश बाहुओं के प्रति अपने प्रेमा आकर्षण के कारण लूटती हैं, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। इस जगत का हर व्यक्ति हाल ही में उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा, अतएव यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है और जिसने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को और उसके बाद के छोटे तथा बड़े देवताओं को जन्म दिया है। जब वह लेट जाता है और हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेता है तो कुछ भी नहीं बचता, न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, न ही इनसे बने शरीर, न ही काल की शक्ति और न शास्त्र। माने हुए विद्वान जो यह घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा तथा पदार्थ के पृथक पक्षों से मिलकर आत्मा बना है, या कि भौतिक व्यापारों से सच्चाई बनी हुई है, ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। यह द्वैत धारणा की जीव प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न है, अज्ञान जन्य मात्र है। ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप समस्त ब्रह्म मोह से परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटना से लेकर जटिल मानव शरीर तक प्रकृति के तीन गुणों से बनी हैं। यद्यपि ये घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं, किंतु वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब होती हैं। वे आप पर मन के अध्यारोपण हैं। फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा साथ ही साथ आपसे अभिन्न मानते हैं। जिस तरह स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे असली सोने की बनी हैं, उसी तरह यह जगत उन भगवान से अभिन्न है जिसने इसे बनाया और फिर वे उसमें प्रविष्ट हो गए। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय रूप में पूजते हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और उनके सिर पर आप अपना चरण रखते हैं, लेकिन आप वेदों के शब्दों से अब भक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं, भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों न हो। आपके स्नेहिल भक्त गण ही अपने को तथा अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं, आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। यद्यपि आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, किंतु आप हर एक की इंद्रिय शक्ति के आत्म तेजवान धारण करता है। देवता तथा प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं, जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा अर्पित वेद का भोग भी करते हैं। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन शासक अपने स्वामी को, जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता है, बेटे प्रदान करते हैं और साथ ही स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रदत्त भेंट का भोग भी करते हैं। इस तरह आपके भय से ब्रह्मांड के सत्रष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान, आपकी भौतिक शक्ति विविध जड़ तथा चेतन जीव योनियों को उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर प्रकट कराती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस पर अल्प दृष्टि डालकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे भगवान, आप किसी को न तो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं न ही पराया, ठीक उसी तरह जिस तरह आकाश का अनुभव गम्य गुणों से कोई संबंध नहीं होता, इस मामले में आप शून्य के समान हैं। यदि ये असंख्य जीव सर्वव्यापी होते और अपरिवर्तनशील शरीरों से युक्त होते तो हे निर्विकल्प, आप संभवतः उनके परम शासक न हुए होते, लेकिन चूंकि वे आपके स्थानिक अंश हैं और उनके स्वरूप परिवर्तनशील हैं, अतएव आप उनका नियंत्रण करते हैं। निसंदेह जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए अव्यय की आपूर्ति करता है वह अवश्यमेव उसका नियंता है, क्योंकि कोई भी उत्पाद अपने अव्यय कारण से पृथक विद्यमान नहीं रहता। यदि कोई यह सोचे कि उसने भगवान को, जो अपने प्रत्येक अंश में समरूप से रहते हैं, जान लिया है तो यह मात्र उसका भ्रम है, क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से अर्जित करता है वह अपूर्ण होगा। न तो प्रकृति न ही उसका भोग करने के लिए प्रयत्नशील आत्मा कभी जन्म लेते हैं, फिर भी जब ये दोनों संयोग करते हैं तो जीवों का जन्म होता है। जिस तरह जहां जहां जल से वायु मिलती है वहां वहां बुलबुले बनते हैं, जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं या विभिन्न फूलों का रस शहद में मिल जाता है, उसी तरह ये सारे बद्ध जीव अंततो गत्वा अपने विविध नामों तथा गुणों समेत आप ब्रह्म में पुनः लीन हो जाते हैं। विद्वान आत्माएं जो यह समझते हैं कि आपकी माया किस तरह सारे मनुष्यों को मोहती हैं, वे आपकी उत्कट प्रेमा भक्ति करते हैं, क्योंकि आप जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति के स्रोत हैं। भला आपके श्रद्धावान सेवकों को भौतिक जीवन का भय कैसे सता सकता है। दूसरी ओर आपकी कुटिल बौहें जो काल चक्र की तिहरी नेमी है, बारंबार उन्हें भयभीत बनाती है जो आपकी शरण ग्रहण करने से इनकार करते हैं। मन ऐसे उच्छंखल घोड़े की तरह है जिसको अपनी इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। जो व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप परमात्मा स्वरूप दिखते हैं, जो समस्त दिव्य आनंद स्वरूप है। ऐसे भक्तों के लिए अपने सेवकों, बच्चों या शरीरों, अपनी पत्नियों, धन या घरों, अपनी भूमि, स्वास्थ्य या वाहनों का क्या उपयोग रह जाता है? और जो आपके विषय में सच्चाई को समझने में असफल होते हैं तथा यौन आनंद के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए इस संपूर्ण जगत में जो सदैव विनाशशील है और महत्व से विहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके? ऋषि गण मिथ्या गर्व से रहित होकर पवित्र तीर्थ स्थानों तथा जहां जहां भगवान ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की हैं, उनका भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। क्योंकि ऐसे भक्त आपके चरण कमलों को अपने हृदयों में रखते हैं, अतः उनके पांवों को धोने वाला जल सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो कोई अपने मन को एक बार भी समस्त जगत के नित्य आनंदमय आत्मा आपकी ओर मोड़ता है, वह घर पर ऐसे पारिवारिक जीवन के अधीन नहीं रहता जिससे मनुष्य के अच्छे गुण छीन लिए जाते हैं। यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थायी सत्य से हुई है, किंतु इसका तार्किक खंडन हो सकता है। निसंदेह कभी कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य नहीं सिद्ध हो पाता, और कभी तो सत्य वस्तु का फल भ्रामक होता है। यही नहीं, यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल परम सत्य के ही स्वभाव में भाग नहीं लेता, अपितु उस सत्य को छिपाने वाले ब्रह्म में भी लेता है। वस्तुतः इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है, जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते थे। आपके वेदों के बुद्धिमतापूर्ण शब्द अपने विविध अर्थों तथा अंतर्निहित व्यवहारों से उन सारे पुरुषों को मोहित कर लेते हैं जिनके मन यज्ञों के मंत्रोच्चारों को सुनते सुनते जड़ हो चुके हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांड अपनी सृष्टि के पूर्व विद्यमान नहीं था और अपने संहार के बाद विद्यमान नहीं रहेगा, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मध्यावधि में यह आपके भीतर दृश्य रूप में कल्पित होता है, जिनका आध्यात्मिक आनंद कभी नहीं बदलता। हम इस ब्रह्मांड की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं के विकारों से करते हैं। निश्चय ही जो यह विश्वास करते हैं कि यह छोटी सी कल्पना सत्य है, वे अल्पज्ञ हैं। मोहिनी प्रकृति सूक्ष्म जीव को उसका आलिंगन करने के लिए आकृष्ट करती है और फलस्वरूप जीव उसके गुणों से बने रूप धारण करता है। बाद में वह अपने सारे आध्यात्मिक गुण खो देता है और उसे बारंबार मृत्यु भोगनी पड़ती है, किंतु आप भौतिक शक्ति से अपने को उसी तरह बचाते रहते हैं जिस तरह सर्प पुरानी केंचुल त्यागता है। आप 8 योग सिद्धियों से महिमा युक्त स्वामी हैं और असीम ऐश्वर्य का भोग करते हैं। सन्यास आश्रम के जो सदस्य अपने हृदय से भौतिक इच्छा को समूल उखाड़ कर फेंक नहीं देते, वे अशुद्ध बने रहते हैं और इस तरह आप उन्हें अपने को समझने नहीं देते। यद्यपि आप उनके हृदयों में विद्यमान रहते हैं, किंतु उनके लिए आप उस मणि की तरह हैं जिसे मनुष्य गले में पहने हुए भी भूल जाता है कि वह गले में है। हे प्रभु, जो लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए योगा अभ्यास करते हैं, उन्हें इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी उस मृत्यु से जो उन्हें नहीं छोड़ेगी दंड मिलना चाहिए, और आपसे भी जिनके धाम तक वे नहीं पहुंच सकते। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग्य को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप हैं। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि सामान्य जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है, जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं। इस तरह आप उसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। क्योंकि आप असीम हैं, अतः न तो स्वर्ग के अधिपति न ही स्वयं आप अपनी महिमा के छोर तक पहुंच सकते हैं। असंख्य ब्रह्मांड अपने अपने खोलों में लिपटे हुए काल चक्र के द्वारा आपके भीतर घूमने के लिए उसी तरह बाध्य हैं, जिस तरह की आकाश में धूल के कण इधर उधर उड़ते रहते हैं। श्रुतियां आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल बनती हैं, क्योंकि वे आपसे पृथक हर वस्तु को अपनी निरसन विधि से विलुप्त कर देती हैं। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, परमात्मा के विषय में ये आदेश सुनकर ब्रह्मा के पुत्रों को अपना चरम गंतव्य समझ में आ गया। वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने सनंदन की पूजा करके उनका सम्मान किया। इस तरह उच्चतर स्वर्ग लोकों में विचरण करने वाले प्राचीन संतों ने सारे वेदों तथा पुराणों के इस अमृतमय तथा गुह्य रस को निचोड़ लिया। और चूंकि तुम पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करते हो, अतः हे ब्रह्मा पुत्र, तुम्हें आत्मविज्ञान विषयक इन उपदेशों पर श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मनुष्यों की भौतिक इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब श्री नारायण ऋषि ने उन्हें इस तरह आदेश दिया तो आत्मवान नारद मुनि ने उस आदेश को दृढ़ निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका व्रत एक योद्धा जैसा वीत्वपूर्ण होता है। हे राजन, अब अपने सारे कार्यों में सफल होकर उन्हों ने जो कुछ सुना था उस पर विचार किया और भगवान को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री नारद ने कहा, मैं उन निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो अपने सर्व आकर्षक साकार अंशों को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे सारे जीव मुक्ति प्राप्त कर सके। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यह कहने के बाद नारद ने ऋषियों में अग्रणी श्री नारायण ऋषि को तथा उनके संत सदृश शिष्यों को भी शीश झुकाया। तब वे मेरे पिता द्वैपायन व्यास की कुटिया में लौट आए। भगवान के अवतार व्यास देव ने नारद मुनि का सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तब नारद ने व्यास से वह कह सुनाया जो उन्होंने श्री नारायण ऋषि के मुख से सुना था। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है जो इस विषय में तुमने मुझसे पूछा था कि मन उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचता है जो भौतिक शब्दों द्वारा वर्णनीय नहीं है और भौतिक गुणों से रहित है। वह ही स्वामी है जो इस ब्रह्मांड की निरंतर निगरानी करता है, जो इसके प्रकट होने के पूर्व, इसके बीच में तथा इसके बाद विद्यमान रहता है। वह अव्यक्त भौतिक प्रकृति तथा आत्मा दोनों का स्वामी है। इस सृष्टि को उत्पन्न करके वह उसके भीतर प्रवेश कर जाता है और प्रत्येक जीव के साथ रहता है। वहां पर वह भौतिक देहों की सृष्टि करता है और फिर उनके नियामक के रूप में रहने लगता है। उनकी शरण में जाकर मनुष्य माया के आलिंगन से बच सकता है, जिस तरह स्वप्न देख रहा व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। जो व्यक्ति भय से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि उस भगवान हरि का निरंतर ध्यान धरे, जो सदैव सिद्धावस्था में रहता है और कभी भी भौतिक जन्म नहीं लेता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत साक्षात वेदों द्वारा स्तुति नामक 87वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।